आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानमंडल के बजट सत्र में आज दोनों सदनों में हुई बजट पर चर्चा। विधानसभा में भाजपा विधायक पंकज चौधरी ने कहा, निर्णायक नेतृत्व से राज्य में आए सकारात्मक बदलाव। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सुनवाई पूरी। 16 फरवरी तक मतदाता सूची से हटे 4,336 नाम। और लखनऊ में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने बनाई कुल 802 रनों की बढ़त। उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में प्रश्न प्रहर में विपक्ष ने बिजली और गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए। सपा सदस्य आशु मलिक ने ग्रामीण इलाकों को नगर निगम से जोड़ने के बाद आधारभूत सुविधाओं के लिए सरकार की नीति से संबंधित सवाल उठाए। जवाब में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाई है और पर्याप्त बजट भी आवंटित किया गया है। विधानसभा में आज बजट पर भी चर्चा जारी रही। भाजपा विधायक पंकज चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी और सेफ्टी के कारण आज राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है।
पिछले 8-9 सालों के अंदर जहां पहले यह अर्थव्यवस्था का साइज 13.30 लाख करोड़ था, यह 30 लाख करोड़ की अब पार है। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगभग डबल हो गई हैं, जीएसटी कलेक्शन डबल हो गया है। यह सब मैं कह सकता हूं कि यह डबल इंजन की जो हमारी सरकार है उसके निर्णायक नेतृत्व जो हमारे यहां पर है उसकी डबल शक्ति का ही यह नतीजा है। उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव हम सब यहां पर देख पा रहे हैं।
वहीं विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि निजीकरण के चलते युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि युवा शक्ति सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 8,45,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में एआई के लिए उनका विजन 3 स्तंभों संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार पर टिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में बदलाव लाने वाला मौका है। इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत 24 घंटे में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अंतर्गत 25 लाख से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी। इस समिट में जौनपुर के छात्र युवराज सिंह भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने देश भर से चुने गए प्रतिभाशाली छात्रों में जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। प्रदेश भर में 8,000 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 53 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि परीक्षाएं केवल छात्र की शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि उनके धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। वहीं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बोर्ड परीक्षा के पहले दिन लखनऊ के जिया मऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को टीका लगाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की अपील की।
नियम बच्चों को ये संदेश देंगे कि बच्चों ने पूरी साल जो मेहनत की है, हमारे शिक्षकों ने जो मेहनत की है, हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे, हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी राज्य स्तरीय हाईटेक कंट्रोल रूम से लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग के जरिए की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी या नकल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई इसमें बाहरी तत्व है, असामाजिक तत्व है, जो अफवाह फैलाता है या नकल कराने में योगदान देता है, तो उनकी FIR कराई जाएगी। जो अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है, उसमें प्रावधान है कि ये संज्ञेय अपराध है, उनको 7 साल की जेल हो सकती है और साथ ही साथ लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने आज लखनऊ में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में प्रदेश भर में 13,161 अधिकारी मतदाताओं की समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 54,44,000 से अधिक फॉर्म 6 आए हैं, जबकि 1,04,00,000 मतदाताओं को मैपिंग न होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 16 फरवरी तक केवल 4,336 लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। श्री रेडवा ने कहा कि 27 मार्च तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी।
1,04,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पिछले SIR में वोटर लिस्ट से जो मिलान कराना था वो खाना बिल्कुल खारिज छोड़ दिया, तो मैपिंग नहीं कराई थी, मिलान नहीं कराया। 2,22,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलान तो करवाया था बट उसमें कोई तार्किक विसंगति नहीं, कमियां नहीं, जिसकी वजह से उनको भी नोटिस गया। 1,85,00,000 नोटिसेस मतदाता को हमने दे दिए और 1,15,00,000 हमारी सुनवाइयां भी पूरी हो गई।
श्री रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आया है। IIM लखनऊ की एक स्टडी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
सर्वे में राम मंदिर निर्माण से पहले और बाद की आर्थिक परिस्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटन, निवेश, कारोबार और रोजगार में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रतिदिन 2,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन से पर्यटन और सेवा क्षेत्र को गति मिली है। 150 से अधिक नए होटल और होम स्टे शुरू हुए हैं। करीब 6,000 MSME स्थापित हुए हैं। अगले 4 से 5 वर्षों में 1,20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के इस सर्वे के मुताबिक टेंपल इकोनॉमी मॉडल ने प्रदेश और देश में आर्थिक समृद्धि के रास्ते खोल दिए हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आए सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है और ये सबके लिए सुलभ होने चाहिए। मरकजी शिया चांद कमेटी ने आज रमजान का चांद दिखने की पुष्टि कर दी है। कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि कल से रोजे रखने का सिलसिला शुरू होगा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले के चौथे दिन आज कर्नाटक ने 802 रनों की बढ़त बना ली। दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 299 रन बनाए। इससे पहले आज पहले सत्र में उत्तराखंड की टीम अपनी पहली पारी में 233 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। कल मुकाबले का अंतिम दिन है। ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज मौजूदा चैंपियन भारत और नीदरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के बजट सत्र में आज दोनों सदनों में हुई बजट पर चर्चा। विधानसभा में भाजपा विधायक पंकज चौधरी ने कहा, निर्णायक नेतृत्व से राज्य में आए सकारात्मक बदलाव। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने कहा, विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 1,00,00,000 से अधिक मतदाताओं की सुनवाई पूरी। 16 फरवरी तक मतदाता सूची से हटे 4,336 नाम। और लखनऊ में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने बनाई कुल 802 रनों की बढ़त। उत्तराखंड की टीम पहली पारी में 233 रन बनाकर हुई ऑल आउट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।